हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो। नमो विष्णुपराय कृष्णभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। तो 2012 के जनवरी में फिर एक बार सूरत में कृष्ण भावना भावित वैष्णव भक्तों के संग में वैष्णो नाम प्रियम, वैष्णो को जो बहुत प्रिय है, अमल पुराण श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, उसका अध्ययन करने का अभ्यास करेंगे। भागवत भागवत वत का मतलब समान, भगवान के समान, और वैसे भगवान का मतलब जैसे हम जानते हैं षड गुण संपन्न, छह गुण जिसमें परिपूर्ण रूप से अनंत हो उसको भगवान कहते हैं। तो उस भगवान का प्रतिपाद्य विषय छह प्रश्न है, छह गुण संपन्न भगवान, उस भगवान को जानने के लिए ऋषियों ने छह प्रश्न पूछे, तो प्रश्न भी छह हैं और भगवान की परिभाषा भी छह गुण संपन्न है। तो ये जो छह प्रश्न है इसका उत्तर पूरी भागवत है। वैसे तो इस जो भी हमारे पास कुछ दिन है चर्चा करने के लिए, हम इन छह प्रश्नों को समझने का अभ्यास करेंगे। सुख है, छह प्रश्नों को समझने का अभ्यास करेंगे। और एक दिन बीच में जो पहले तीन श्लोक भागवत के हैं, पहला दूसरा और तीसरा, उसको मंगलाचरण भागवत का कहते हैं, मंगलाचरण है भागवत का। तो उस मंगलाचरण का उद्देश्य और उसका अर्थ हम अपने लिए समझने का भी अभ्यास करेंगे, लेकिन आज हम भगवान और भगवान को भागवत में पहले ही श्लोक से परम सत्य के रूप में निर्धारित किया हुआ है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा गाड और परम सत्य में अंतर है। तो सत्यम परम धीमहि से लेकर परम सत्य के ऊपर ही भागवत का लक्ष्य परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको उसके अंदर भगवान, भगवान की सारी शक्तियां, ये प्रकृति, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है परम सत्य में। तो भागवत परम सत्य, जब परम सत्य कहेंगे तो फिर असल में उसमें फिर पक्षपात होगा नहीं। परम सत्य सबके लिए सत्य, सत्य के लिए सबके लिए सत्य होता है। तो इस दृष्टिकोण से परम सत्य भागवत का लक्ष्य है। अब भागवत कलयुग के विशेष रूप से एक लाइन पहले अपन पढ़ के देखते हैं कि जो साधु लोग होते हैं, ऋषि आचार्य लोग होते हैं, उनका एक ही जीवन का लक्ष्य होता है लोगों का कल्याण, एक ही लक्ष्य होता है लोगों का कल्याण, और वो विशेष रूप से आध्यात्मिक कल्याण करना चाहते हैं। और ये मानना है कि आध्यात्मिक कल्याण के अंदर भौतिक कल्याण समाया हुआ है, अलग उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, लेकिन भौतिक कल्याण के प्रयास करने में आध्यात्मिक कल्याण नहीं आएगा, तो इसलिए बुद्धिमानी मैंने वाइज जो साधु संत महात्मा है वो बुद्धिमान है, इसलिए उन्हों का जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक कल्याण की शिक्षा है जो स्वतः अपने आप नहीं हो सकती। देखो भौतिक कल्याण अपने आप होता है, बच्चे को भूख लगती है तो वो खाना अपने आप खा लेगा, उसको कहीं मिल जाएगा कुछ भी खा लेगा, उसको उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। भौतिक कल्याण का मतलब खाना पीना, ये तो अपने आप हर एक व्यक्ति कर ही लेता है, लेकिन आध्यात्मिक कल्याण अपने आप करना संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, स्वतः कृष्ण ज्ञान माया मुग्ध जीवेर नहीं, माया मुग्ध जीवों के लिए अपने आप कृष्ण ज्ञान हो जाए ये संभव नहीं। माया मुग्ध जीव, माया मुग्ध का मतलब मुग्ध कहते हैं जो नशे में हो, ठीक है ना, ये धुत नशे में, मुग्ध कहते हैं नशे में हो, तो माया के नशे में जो लोग हैं उनको भगवान का ज्ञान होना, कृष्ण ज्ञान होना अपने आप संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके वेद दिया, साधु भेजा और परमात्मा के रूप में स्वयं सबके हृदय में बैठे हैं। तो तीन रूप से भगवान ने कृपा किया कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शास्त्र, साधु और परमात्मा। तो साधुओं का विशेष लक्ष्य है जन कल्याण। तो 88,000 ऋषि कलयुग के आने के बाद, कलयुग के प्रभाव से मानव के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, कलयुग का आक्रमण मानवता के सद्गुणों को नष्ट करना है। कलयुग का मार्च जो है, कलयुग आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, मानवता के अच्छे गुणों को अच्छी तरह से नाश करेगा। उसको रोकने के लिए वो सारे ऋषि कह रहे हैं कोई साधन होना चाहिए जो लोगों का कल्याण हो। उस विषय में उन्होंने भागवत सुनना आरंभ किया। तो भागवत सुनने का उनका लक्ष्य था कलयुग के लोगों को मानवता के जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कैसे सहायता की जाए, मानवता के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायता की जाए, कलयुग उनका अहित न कर सके उसके लिए क्या करें। इसको मतलब हम मान समझ लिए कि कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, लेकिन कोई ऐसी इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन हो जिससे कलयुग होते हुए वो बीमार न हो, ये आधुनिक भाषा में ऐसे समझना चाहिए इसको कि बीमारी तो है ही, उसको तो उससे बचना मुश्किल नहीं, मुश्किल है, लेकिन वैक्सीनेशन करने से आप रेजिस्टेंट हो जाएंगे, कलयुग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। तो वो कौन सा ऐसा साधन है, तो इसके लिए ये सारे ऋषि नैमिषारण्य में जो है वो सूत गोस्वामी, जो ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है उग्र सर्वा, रोमहर्षण का बेटा, इसको बलराम जी ने आशीर्वाद दी है दीर्घ आयु की और सारा ज्ञान इसको प्राप्त हो, ये बलराम जी की आशीर्वाद है। इसका एक सीधा सा अर्थ है कि बलराम जी आदि गुरु है और उनकी कृपा पात्र, ये साक्षात उनका कृपा पात्र है सूता जो उग्र सर्वा है विशेष रूप से। तो सूत होते हुए भी, सूत का मतलब मिक्स जाती है, सूत होते हुए भी भृगुवंशी ब्राह्मणों का नेता सौनक आदि ऋषि उस सूत से सुन रहे हैं, क्योंकि वो सीधा बलराम जी से कृपा प्राप्त करके ये कार्य। तो ये बहुत बड़ा एक सुनाने वाला सूत है और सुनने वाले ब्राह्मण है। सूत को पुराण पढ़ने का अधिकार है, वेद पढ़ने का अधिकार सूत को नहीं है, फिर भी ये सारे वेदज्ञ ब्राह्मण सूत से सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर बलराम जी का आशीर्वाद है। ये एक विशेष रूप से जो दर्शन इसमें मिलता है, कोई पूछे कि सूद से ब्राह्मण क्यों पढ़ रहे थे, तो भगवान जैसे गुरु के रूप में आशीर्वाद अगर दे देता है तो फिर उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। तो पहली बात जो ये सारे ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी के विषय में, वो अपन इसमें देखें। प्रश्न पहला पढ़ने से पहले ये पहला शब्द जो सूत गोस्वामी के लिए ऋषि कह रहे हैं वो कह रहे हैं निष्पाप अनग, आप निष्पाप हो। और अर्जुन को भी भगवद गीता में अनग निष्पाप कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, आप निष्पाप हो। तो निष्पाप होना त्वया खलौ पुराणानि से इतिहासानि चा अनघ, हे निष्पाप आपने सारे पुराण और इतिहास, तो इतिहास महाभारत इतिहास है और भागवत पुराण है, तो ये इतिहास और पुराण दो विभाग हैं। इतिहास में हिस्ट्री होती है बायगान डेज की, जो गुजरे हुए दिन है उनकी, जैसे रामायण इतिहास है कविता के रूप में, महाभारत इतिहास है, ये हिस्ट्री है। पुराण जब होती है तो उस पुराण तब उसको कहते हैं पुराण, मतलब पुराने समय के इतिहास के अंदर क्या आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, इतिहास से आध्यात्मिक शिक्षाएं जो ग्रहण की जाती है वो पुराण की विशेषता है इतिहास से, उसमें शिक्षाएं इंक्लूड होती। तो इतिहास और पुराण में अंतर है। तो इतिहास भी, तो इसका मतलब जो सूत होते थे वो इतिहास गाते थे और पुराणों का प्रवचन करते थे, उनका ये कार्य होता था। और तीसरा क्या आपने धर्मशास्त्राणी, यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइस, आप अनंग है। जी यहां लिखा है धर्मशास्त्राणी, धर्मशास्त्राणी, जैसे भगवद गीता को तो सीधा सा लिखा है कि धर्मशास्त्र है, ये धर्मशास्त्र है। वैसे तो योग शास्त्र लिख के भी धर्मशास्त्र दो जगह है, धर्म एक तो भगवद गीता का जहां के जो इस धर्म शास्त्र को सुनेगा और कहेगा, 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में धर्मशास्त्र कहा हुआ है। तो धर्मशास्त्राणी, यहां प्रभुपाद लिखा स्क्रिप्चर गिविंग राइट डायरेक्शन टू प्रोग्रेसिव लाइफ, धर्मशास्त्राणी जो व्यक्ति को अपने धर्म पालन करने में मार्गदर्शन करें, धर्मशास्त्र। तो इतिहास पुराण धर्मशास्त्र, और फिर लिखा है कि आपने ये सब सीखे हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस, एक सीखे हैं और फिर क्या लिखा है, अधीतानी अध्ययन किए हैं, आख्यातानी और इसका व्याख्यान किया है। इसको दो शब्दों में ऐसा समझाया जाए, कभी भी शास्त्र को कौन समझ सकता है जो सुनता है, और सुनने के बाद उसको दूसरे को सुनाता है, इसको श्रवण और कीर्तन कहते हैं। पढ़ने से नहीं, सुनने से और सुनाने से शास्त्र समझ में आता है, श्रवण और कीर्तन से। श्रवण का मतलब सुनना और कीर्तन का मतलब सुनाना, पढ़ना नहीं। भगवद गीता का सातवां अध्याय जहां शुरू होता है, जहां विशेष रूप से भगवान में मन कैसे लगे, आसक्त हो, इसका मतलब भक्ति के उत्तम कोटि के भक्त की परिभाषा है कि भगवान में मन कैसे लगे, उसका साधन क्या है, श्रणो, सुनो, सुनना उसका साधन है। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ श्रवण करना, और श्रवण करने के बाद उसी चीज को जो सुना है दूसरे को सुनाना, ये साधन है शास्त्र के अध्ययन करने का। पहले सुनाओ, सुनो, समझो और फिर सुनाओ, तब अनुभव आस्ते आस्ते उसमें अपने आप होने लगेगा। लिखा नॉट बाय रीडिंग, हियरिंग एंड देन एक्सप्लेनिंग। आख्यानी मतलब जहां आपने व्याख्यान किया है, और फिर अधितानी और यहां आपने अध्ययन किया है। तो श्रवण सबसे मुख्य है, सुनना, और सुनने के बाद इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अब जो यहां से सुन के जा रहे हैं ये जाके आपको और नहीं तो अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। तो उसमें पहले सबसे ये हो कि आपको याद रह जाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। दो चार बार उसको सुनाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद करने के लोग कहते हैं हमको याद नहीं होता है, याद करने का एक ही साधन है, आप सुनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सुनो, समझो और सुनाओ, क्यों बगैर समझे के नहीं सुना सकते हो, सुनाने के लिए समझना जरूरी। अब कहते हैं कि आपने तो व्यास देव की कृतियों को जाना है, इसका मतलब आप परंपरा में हैं, कहां से, जहां से वेद व्यास से ये शुरू होती है परंपरा, क्योंकि शास्त्र तो इस धरती के ऊपर भगवान ने कृपा करके शास्त्र कैसे दिया, व्यास देव के रूप में प्रकट होके, जो अपन ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि अपने आप कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, कृष्ण ज्ञान के लिए शास्त्र की जरूरत है, तो शास्त्र भी कौन देगा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यासदेव के रूप में आकर शास्त्र दिया, तो शास्त्र व्यासदेव भगवान का अवतार है, उसने दिया है, तो उस व्यासदेव के शास्त्रों को बादरायण उसको आपने सुना है, केवल उसको, एक को नहीं, और भी ऋषियों के आप वरिष्ठ हो, वेद शास्त्र को जानने वाले हो, सूत गोस्वामी, आपका व्यासदेव ने जो शिक्षा दी है वो सारी आपने ग्रहण की है, और व्यासदेव भगवान का अवतार है, और आप दूसरे भी साधु संतों को जानते हो, दूसरे भी आचार्यों को जानते हो जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विज्ञानों को जानते हैं। एक बार भगवत गीता से भी समझ में आएगी, और यहां भी भगवत में ये सब भी साफ समझ में आती है कि हमारे को ज्ञान विज्ञान दोनों, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों की जानकारी की आवश्यकता है। शरीर और आत्मा दोनों को जानना जरूरी है, केवल हम आत्मा है शरीर नहीं है तो भी काम चलेगा नहीं, शरीर के अंदर रह के आत्मा से भक्ति करनी, जो भक्ति करनी है वो शरीर के थ्रू करनी है, शरीर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को भूल जाएंगे, तो शरीर का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो दोनों चीजों को आपने जाना है, और फिर ऋषि प्रशंसा करते कहते हैं सूत गोस्वामी आपने पहले तो आप हैं सौम्य, सौम्य का मतलब आपका स्वभाव बहुत सौम्य है, सौम्य चंद्रमा को सौम्य का शीतल स्वभाव वाले हो, इसलिए आपके ऊपर अनुग्रह किया है, अनुग्रह भ्रूय स्निग्धस्य शिष्य अनुग्रहात, आपके ऊपर गुरुजनों ने, एक गुरु नहीं लिखा है, गुरुजनों ने, चेतना महाप्रभु ने चेतना चरित्र में जहां गुरुओं का वर्णन किया है वहां बहुवचन में गुरु शब्द लिखा है, और यहां भी भागवत में बहुवचन में गुरु शब्द है। क्योंकि आप निम्र स्वभाव के, सीखने की आप में अभिलाषा थी, इसलिए गुरुजनों ने आपके ऊपर अनुग्रह किया। और जो यहां प्रभुपाद की लैंग्वेज तो बड़ी सुंदर है, एंड बिकॉज यू आर सबमिसिव योर स्पिरिचुअल मास्टर्स हैव एंडोर्ड यू विथ ऑल द फेवर्स बेस्टोड अपॉन ए जेंटल डिसाइपल। एक सौम्य शिष्य के ऊपर जो जो कृपा की जा सकती है वो सब आपके ऊपर गुरुजनों ने की है। Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. प्रभुपाद ने साइंटिफिकली शब्द का मतलब है जो आपने अनुभव किया है, रियलाइज किया है, विज्ञान, साइंस विज्ञान कहते हैं, रियलाइज किया है। तो तीन शब्द हैं कि एक अनुग्रह, इसका मतलब गुरुजनों के अनुग्रह के बगैर भी जो जो शास्त्र का रहस्य है, आध्यात्मिकता की गूढ़ता है, वो समझ में नहीं आती है। और उसके लिए स्निग्ध से शिष्य मतलब वैसे स्निग्ध कहते हैं जो यहां शब्द है जेंटल, स्निग्ध वैसे कहते हैं जैसे कोमलता, स्निग्ध कोमल चिकना, मतलब जिस जो जो किसी को आंख में डालो तो खटके नहीं, आंख में डालने से जो खटके नहीं, इसका मतलब इतना कोमल है और इतना सॉफ्ट है, तो असल में उसको आदमी सब कुछ देने, जो आंख में रख सकते हैं जिसको, उसको सब कुछ दे सकते हैं। इसका मतलब सीखने के लिए स्निग्धता अपने में पैदा करनी पड़ेगी, तब अनुग्रह होगा। पहले से तो सब लिखा है। तो ये अब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने से पहले भी किससे पूछना चाहिए उसका परिचय दे रहे हैं कि किससे प्रश्न पूछना चाहिए। पहले तो वेद व्यास के शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, इसका मतलब परंपरा में होनी चाहिए, सीधा सा इसका अर्थ है परंपरा में होना चाहिए। भाई किससे सीखना चाहिए, जो वेद व्यास से आती हुई परंपरा में होना चाहिए। और फिर उसने बैठ के दीर्घ काल तक शिक्षा ग्रहण की है गुरुजनों के चरणों में। गुरुजन इसलिए कहते हैं कि जैसे अपने शास्त्रों का सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का कि एक गुरु तो होता है मंत्र दीक्षा देने वाला, वो तो हमारे को इनिशिएट करता है, मतलब वो आध्यात्मिकता में हमारे को आरंभ करता है। इनिशिएशन शब्द का अर्थ है आरंभ करना, तो आध्यात्मिकता में वो हमको आरंभ करता है, लेकिन फिर उस रास्ते के ऊपर चलाने के लिए बहुत से शिक्षा देने वाले, सहायता देने वाले वरिष्ठ वैष्णव हमारे संगी साथी होते हैं, जो हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो ये जो बहुवचन शब्द यहां भी है और बहुवचन शब्द चेतना चरितमृत में, पहला विषय ही चेतना चरितमृत का गुरु है, गुरुन गुरुन वैष्णवंश्च। तो दूसरा तो अपने को इससे सीखना ये है, बाहर दूर लंबा न जाकर भी इस कान के अंतर्गत, क्यों पहले हम अपने घर को समझ लें। जो भी वैष्णव प्रभुपाद के शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं वरिष्ठ, अथवा गुरु का कार्य निभा रहे हैं पूरे विश्व में, उन सब के पास कुछ न कुछ प्रभुपाद से विशेष समय में विषय कुछ ग्रहण किया है, उनके पास वो है धन, जहां जिससे जब मिले तो बड़ी कोमलता के साथ और बड़ी आतुरता के साथ उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ये साफ यहां से और चेतन चरितमृत दोनों से साफ मिलता है, क्योंकि एक 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 सिस्टम जो वैदिक था वो अब कल युग में नहीं चल रहा है। वैदिक सिस्टम ये होता था कि शिष्य 8 साल का गुरु के आश्रम में 25 साल रहता था, वही दीक्षा देने वाला वही शिक्षा देने वाला होता था, उसका दूसरा शिक्षा देने वाला सीनियर उसका
गार्ड ब्रदर हुआ करता, जो स्टूडेंट दूसरा होता था। अंग्रेजी शब्द गार्ड ब्रदर बहुत मुख्य है, क्योंकि हम सारे भगवान की सेवा में लगे हैं इसलिए भाई है। ये शब्द हिंदी में गुरु भाई हो गया, यहां गड़बड़ हो गई सारी, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई भाषा में। गार्ड ब्रदर शब्द बहुत सुंदर है कि क्योंकि हम कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं इसलिए हम सब भाई हैं। तो ये जो एक ये विशालता बहुत आवश्यक है इस 10,000 साल तक इस्कान संस्था को मानवता के मार्गदर्शन करने के लिए, कि कम से कम वैसे तो गौड़िया वैष्णव पूरे के अंदर और फिर चार संप्रदाय वैष्णव के प्रति भी हमारे ऐसे ही भावना होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने मंदिर में चार संप्रदाय के आचार्यों को स्थापित किए, मायापुर में चार संप्रदाय के आचार्यों को स्थापित किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। तो ये चार संप्रदाय बोनाफाइड हैं, ये मतलब हमारी उदारता समझने की होनी चाहिए। एक एक संप्रदाय से दो दो चीजें महाप्रभु ने ली है, एक एक संप्रदाय से विशेष दो दो चीजें महाप्रभु ने ग्रहण की है। तो इसका मतलब हर एक जगह जो वैष्णव, कम से कम जहां वैष्णव समाज है उसमें हमारे को सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहां ये कहते हैं आपने गुरुजनों से ये सब सीखा है और बहुत समय तक, तो अपने अपने स्तर के ऊपर हमारे को जब भी ऐसा वातावरण मिले तो थोड़ा सा मैच्योर होकर और थोड़ा ज्यादा जिसको कहा जाए कि गंभीर होकर बहुत ये, क्योंकि जैसे आप ऐसे समझ लो बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ अपने घर के अंदर वो एक माँ को ही पहचानता है, जैसे बड़ा होता है तो फिर और उसका दायरा जैसे बढ़ता है तो उसकी शिक्षा भी बढ़ता है। सिर्फ एक जगह तो भाषा सीख लेता है लेकिन उस भाषा से दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा सीखता है कि सिर्फ माँ से बात करने के लिए सीखता है। थोड़ा सा एक थोड़ी विशालता तब आती है जब आदमी इसको समझने का प्रयास करता है, उसमें उत्साह होना चाहिए और सब मतलब किसी तरीके से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस्कॉन एज ए सोसाइटी का, तो जिसको भी भाई प्रभुपाद जीबीसी को नियुक्त करके गए, जीबीसी ने जिसको भी ये सेवा दी है, असल में सेवा है, गुरु बनना सेवा है, सेवा करना है। ये तो सेवा ऐसे है जैसे माँ बाप को सेवा करनी है बच्चों की, कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छे मार्ग पे चलाना है, देखभाल करनी है, तो ये सेवा है उनकी। तो वो जो भी सेवा करते हैं जहां जहां मौका मिले तब उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक यानी भागवत से ये बहुत सुंदर सी शिक्षा अपने आप एक बाहर आ रही है और ये चेतना चरितमृत से भी ऐसा ही शिक्षा पहले ही अध्याय में पहला ही श्लोक इसके ऊपर है। अब पहला प्रश्न पूछते हैं सारे ऋषि और ये प्रश्न के शब्द हैं तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान। ये पहले तो आयुष्मान आपकी आप दीर्घ आयु हैं, आपके ऊपर कृपा है। अब हम आपने तत्र तत्र देर आफ मतलब जिन जिन गुरुजनों के चरणों में रहकर, विशेष रूप से तो ये सूतक गोस्वामी अपने आप को सुखदेव गोस्वामी का शिष्य मानता है, सीधा सा तो ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य जहां से भागवत सुन के आया, बाकी सारे इतिहास अन्य ऋषियों के चरणों में रहकर इन्होंने सीखी है ऐसा लगता है, यहां लिखा है जैसे शब्दों में। अदर सेजेस लिखा है, और भी ऋषियों के आप शरण में रहे हैं। तो अंजसा शब्द कहां से निकला, अंजन से, अंजन का मतलब जो आंख में डाला जाए, तो आंख में डालें और न खटके उसको अंजसा बोलते हैं। तो अंजसा का अर्थ होता है आसानी से जो हो सके, जो सरलता से हो सके, जिसके लिए कोई परेशानी ज्यादा न हो। तो अंजसा का श्री प्रभुपाद ने मेड इजी, हमारे लिए ये आसान कर दीजिए, सरल बना दीजिए। इसका अर्थ है कि वैदिक साहित्य अपने आप में इतना विस्तृत है कि उसको सरलता से समझाने वाला होना आवश्यक है। और ये इतना मुश्किल समझना नहीं है। साधारण स्कूल में भी किताब बाजार में मिलते हैं, फिर भी समझाने वाले की आवश्यकता है। किताब बाजार से लेके कोई नहीं पढ़ सकता है, समझाने वाला चाहिए, क्योंकि वो इजी कर देता है। हमारा अनुभव इसमें यह है कि किताब की भाषा होती है, उसको कहते हैं लेखने की भाषा होती है, और बोलने की भाषा होती है जो सामान्य हमारी बोलचाल की भाषा है। तो जो लिखने की भाषा में बोलने की भाषा में समझा सके उसको अंशा बोलते हैं। असल में हमारा अनुभव इसमें यह है, किताब से आप कभी पढ़े ऐसे पढ़ तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सेंटेंस लंबा है, उसमें कामा की बात बोलना है, वो प्रचलित भाषा नहीं है बोलने की। तो अंशा का मतलब जो सामान्य लोगों को सामान्य उदाहरण से आसानी से समझ में आए वो रास्ता बताओ। तो पहला प्रश्न ये है, पहले तो सरल जो होना चाहिए सिंपल करके बताइए, और दूसरा क्या करके बताइए, विनिश्चितम। और ऐसा नहीं बताइए भी कीजिए वो भी करिए, ऐसा नहीं, विनिश्चितम। एक तो निश्चित होता है, निश्चित मतलब आप निश्चित, अंग्रेजी में क्या लिखा है ना, हिंदी में क्या लिखा है इसका अर्थ, असर्टेन। अंग्रेजी में तो असर्टेन है,
निश्चित क्या हुआ,
निश्चित। और देखो निश्चित तो फिर निश्चित ही लिखना चाहिए, विनिश्चित कर दिया है, विनिश्चितम, निश्चितम नहीं विनिश्चितम। मतलब फिर किसी को थोड़ा सा भी संदेह न रहे, यानी ऐसे कोई उसमें डाउट निकाले ऐसी बात नहीं करना। आप एक ऐसी आसान बात हमको बता दीजिए, पुनश्याम किसके लिए, सारे जन समुदाय के लिए। पुनश्याम का मतलब मानव मात्र के लिए, ह्यूमन रेस के लिए। ये उदारता है पूछने वाले की, हमारे लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। देवहूति माता जब पूछती है कपिल देव, वो कहते मेरे लिए और जन सामान्य के हित के लिए। तो सबके लिए एकांततः एक रास्ता, एक ही बताइए। एकांततः, एकांतंत को लिखा है एब्सोल्यूटली, एकांत, एकांत एक, और अंत उसके बाद दूसरा नहीं होना चाहिए, एक के बाद अंत हो जाए ऐसा बात बताइए कि दूसरे का गुंजाइश भी नहीं हो। क्या बताऊं श्रेयस, जो कल्याणकारी हो। श्रेय शब्द और प्रिय शब्द दो शब्द होते हैं, प्रिय का मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, और श्रेय का मतलब कल्याण किस में है। प्रिय मेरी इंद्रियों को क्या अच्छा लगेगा, और श्रेय ये है कि कल्याण किस में है। जैसे डायबिटीज वाले को प्रिय तो लगता है गुलाब जामुन, लेकिन श्रेय करेला है। तो दोनों में अंतर है ना, अब चाहिए श्रेय, प्रिय नहीं चाहिए। हमको प्रिय पकोड़ा लगता है, लेकिन श्रेय बॉयल है, कल्याण तो उसमें है ना। तो ये श्रेय क्या है ये बताइए। और देखो ये निष्पाप की पहचान ये है, अर्जुन भी श्रेय पूछता है, यत श्रेयम सनुश्चितम ब्रुवीतन में, वहां भी वो पूछता है श्रेय क्या है, और यहां ये ऋषि पूछते हैं श्रेय क्या है, और हम सब पूछते हैं प्रिय क्या है। दुनिया में प्राय प्रिय क्या है, हमारी पहचान आज क्या पका है, मतलब हमारी च्वाइस का है कि नहीं है। प्रिय और श्रेय, तो यहां श्रेय पूछते हैं। ये तो कभी एक पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर भी कुछ लोग बोलते रहते हैं, श्रेय और प्रिय में अंतर क्या है, एक विषय करके इसके ऊपर बोलते हैं। तो ढूंढना चाहिए कि श्रेय शब्द कहां कहां, जैसे यहां ये श्रेय पूछ रहे हैं, अर्जुन श्रेय पूछ रहा है, और श्रेय जब श्रेय भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि अर्जुन को भगवद गीता में श्रेय क्या बताया, अल्टीमेटली तुम्हारा श्रेय क्या है, मन मना भव मत भक्त, तुम्हारा मेरा भक्त बनना ही तेरे लिए श्रेय, अथवा ये सब रिश्तेदारों को बचाना श्रेय नहीं है, ये तुम्हारा प्रिय है, तुम समझेंगे ये बच जाएंगे ये तुम्हारा प्रिय, ये फिर बाद में मर जाएंगे तब तुम रोओगे, लेकिन तुम मेरे भक्त मान जाओगे मैं मरने वाला हूं नहीं इसलिए तुम्हारा श्रेय हो जाएगा, तुम दुखी होगे नहीं, सीधा सा इसका अर्थ ये है कि मेरे में तो परिवर्तन होना नहीं है, मैं तो सदा ऐसा रहूंगा, तो तेरा रिश्ता मेरे से रहेगा तो तेरे को कभी दुख होगा नहीं, तेरा कल्याण इसमें और इसमें बाकी जो को हो जाएगा इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है, तो यत एकांत श्रेय तन्नह संक्षितम 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 नौ एक नौ एक का नौ पहला प्रश्न है संक्षितम वो हमको समझाइए। अब ये प्रश्न क्या हो गया पहला, कृपया इसलिए आप बलराम जी के द्वारा आयुष्मान हैं, दीर्घायु हैं और हमारे को आप समझाइए आसानी से समझने वाले रीति से, आसानी से समझने वाली भाषा में। ये एक लाइन बहुत बहुत सुंदर है, प्रवचन बहुत अच्छा किया, वाह क्या बात है, श्लोक के ऊपर श्लोक धारावाहक बोलते जा रहे थे, क्या बोला नहीं समझ में आया, क्या बोला समझ में नहीं आया, बोला बहुत अच्छा। तो प्राय हमारा अनुभव है लोग कहते हैं कि इवन हिंदी भी लोग ऐसी बोलते हैं जो हिंदी पढ़ने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती, वैसे टाइम तो है नहीं फिर डिक्शनरी कहां से खोलें। तो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आए, इजीली अंडरस्टैंडेबल, और फिर जो आपने निश्चय किया है गुरुजनों के चरणों में रहकर जो आपने निश्चय किया, इसका मतलब आपका अनुभव क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपने जो निश्चय किया है किस विषय में, विनिश्चित निश्चित रूप से एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली का मतलब पूर्णता, निश्चित रूप से जन सामान्य का कल्याण किसमें है, एक ही ऐसी बात आसानी से समझाइए जिसमें सारे लोगों का कल्याण होना संभव हो, मानो के सूत गोस्वामी कहते कौन सी परेशानी हो गई है सब लोगों को, भाई पहले तो ऐसे होता था कि भाई हरेक के लिए रास्ता अलग भी सिखाया जाता था, एक एक निवृत्ति में जाते थे, कोई प्रवृत्ति मार्ग में जाते थे, कोई आस्ते आस्ते, तो आप ऐसा क्यों पूछते हैं, तो वो कहते हैं कलयुग में एक समस्या है, बोला क्या समस्या है कलयुग में, प्रायण अल्प आयु, एक इनकी उम्र कम है, इनके पास टाइम नहीं है, पहले लोगों के पास अधिक समय होता था, भोग भी करते थे तो बाद में योग करने का समय था, अब तो भोग करते हुए योग करते हैं, पिज्जा खाते हुए और प्राणायाम करते हैं, पिज्जा भी खाते हैं प्राणायाम भी करते हैं, महानिधि महाराज कहते हैं पिज्जा और पास्ता नरक का रास्ता। तो ये अब इसका भावार्थ हम थोड़ा इसका भावार्थ पढ़ते हैं, पहले श्लोक का प्रभुपाद का जो तात्पर्य है पहले श्लोक का, जो पहला प्रश्न है इसको देखते हैं, कौन सा पहला प्रश्न क्या हो गया भागवत का, सारे एक ही निश्चित मार्ग जो सबके लिए कल्याणकारी हो,
जो आपने अनुभव से निश्चित किया हो उसको आसान भाषा में समझाइए। क्यों ऐसा करने की जरूरत है? तो पहले कहते हैं कि लोगों की उम्र कम है, इतना समय नहीं है लोगों के पास, क्या भाई बहुत सी बातें समझने का लोगों के पास समय नहीं है, स्टेज बाय स्टेज करने का समय नहीं है, एक बात। दूसरा क्या है? मंदा। एक तो उम्र कम है और दूसरा मंदा का मंद की मंदा किसको बोलते हैं? वो उसके बाद वाला है, मंदा, लेजी, मंदा, आलसी है। किस बात में आलसी है? बोला सुबह उठने में बिल्कुल आलसी है। आलसी की पहचान कहां से होती है? सुबह उठने से। और प्रायः हम में से कोई भाग्यशाली है जो घंटी खुद रात को घंटी सेट करता है कि इतने बजे उठना है, और घंटी तो बेचारी मशीनें बजती है, और जब घंटी बजती है तब पांव धरती पे होना चाहिए, लेकिन प्रायः हमारा हाथ घंटी के ऊपर जाता है। ये हमारे मंद होने का प्रमाण है। हम अपने आप को कहते हैं हाथ घंटी पे जाता है, पांव धरती पे नहीं जाता। ये सच है कि झूठ है? और सेट कौन करता है? हम करते हैं रात को कि हमें उठना है। ये मंद की परिभाषा सीधी ये है कि सवेल उठने में आलसी, और बाद में उठने के बाद स्नान करने में आलसी, ये महामंद। सूरज उगने से पहले स्नान करना है, नहीं कहा बस कम से कम सूरज उगने से पहले स्नान करना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य क्या? उसने हमसे पूछा, तो इसका आपको कहने का मतलब सूरज नहीं देखे स्नान करते? कोई बात नहीं, हम शाम के समय करते हैं। पानी जब पड़ता है ना शरीर पे तो विद्युत पैदा होती है, शरीर में बिजली पैदा होती है, तो जो आलस है वो चला जाता है, जो लेजीनेस है वो चला जाता है। उस जो चीज से लेजीनेस चला जाए उसी चीज को करने में हम लेजी हैं। तो लोग क्या है? आलसी है। और दूसरा आलसी क्या है? आलसी किस बात में? आज सत्संग है उधर चल, अभी मूड नहीं है, टाइम नहीं है, तो वहां जाने में भी आलसी, उठने में आलसी, और जहां शिक्षा मिल रही है वहां जाने में आलसी, और वहां जाके सोना, ये आलसी का दूसरा पहचान है, वहां जाके सुनने के बजाय सोना। प्राय किसने मुझे बताया कि एक आदमी रोज सत्संग में आता था और आके सो जाता था। उसे पूछा, भाई तुम रोज आते क्यों जब तुम कुछ सुनते नहीं हो? बोला देखो, एक तो यहां पंखे एसी कूलर लगे हुए हैं, नींद अच्छी आती है, और दूसरा जैसे ही वो अपने आप उठाते हैं फिर भोजन मिलता है। तो लोग दुनिया में परेशान तो है सोने और खाने के लिए, यहां तो दोनों मिल रहे हैं। व्यवस्थित रूप से सोने के लिए साधन है और भोजन का प्रबंध है, तो इससे ज्यादा और कहां सुख मिलेगा? नहीं, सोने का साधन कम है ना। योग में, योग के शिविर में लोग ज्यादा क्यों जाते हैं? क्योंकि अपना बिस्तर ले जाना पड़ता है, सोए रहो। और शव आसन में बहुत से लोग सोए होते हैं। तो लोग कलयुग के बहुत आलसी है, बहुत आलसी है। मैं लेटर, अभी तो लेटर कोई लिखता नहीं है, पहले लेटर पोस्ट के डब्बे में डालते थे तब जाता था ना, एक आलसी था, कौन जाएगा पोस्ट के डब्बे तक, खिड़की से नीचे फेंकता हूं, कोई देखेगा उठा के जाएगा डाल देगा। आलसी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो कल युग में हमारा आलस क्या है? भक्तों का सुबह उठने में देरी करना, नहाने में देरी करना, सत्संग में जाने में
देरी करना नहीं, उसमें उत्साही नहीं होना, और जाने के बाद भी वहां आलस को ऊपर आने देने का मौका देना, ये हमारे लिए आलस है। सबके लिए तो है, हम दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है वो देखना चाहिए, मंदा। और दूसरा कि बोला आलसी हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाग्य अच्छा हो तो बोला मंद भाग्य, भाग्य भी अच्छा नहीं है। एक तो उम्र कम और फिर आलसी, वैसे भी कितना परसेंट, मेरे ख्याल में 30% जिंदगी का तो हम सोते ही हैं, 30% जिंदगी का तो सोने में जाता ही है। तो उनका भाग्य भी अच्छा नहीं है, बिचारों का भाग्य मंद भाग्य ना, पहला मंद, फिर मंद मत्य है। बोला आलसी है लेकिन बुद्धिमान हो तो, एक प्रभुपद कहते लेजी इंटेलिजेंस, बोला मंद मत्य है, मति मतलब बुद्धि, बोला उनकी बुद्धि भी मंद है, केवल शरीर से आलसी नहीं है, बुद्धि भी बहुत मंद मत्य है। इस प्रभुपद ने मिसगाइडेड, मंद मत्य। मैं कहता हूं कल मैं परसों में देखा वहां पूरे देश के पीडियाट्रिशियन, पूरे देश के चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, सब अच्छे खासा, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये शब्द मंद मत्य ऐसा सुंदर लगता है उनके ऊपर। अब ये मैं कोई बुद्धिमानी का है कि फीमेल चाइल्ड को नहीं मारना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाकी सबको मार दो, ये मैं समझ, तो मंद मत ये हुआ कि नहीं हुआ। भाई वही कहना चाहिए कि और जो करते हैं वही कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, वही करते हैं वही कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मिसगाइडेड, प्रभुपाद ने मिसगाइडेड इसलिए लिखा है कि उनको मार्गदर्शन मिला ही नहीं। और मैं सच कहता हूं, मेरे को कहा, मैं अस्पताल में यहां से गया तब था, वो एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट मेरे पास आके बैठा, बोला किसी ने हमको कभी नहीं बचपन में सिखाया था कि ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, आज हमारे बच्चों को ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है उसके जीवन को संचालन करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, मन को एकाग्र करके पढ़ने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए कितना आवश्यक है, कहीं किधर भी का वो शिक्षा नहीं मिलती, जबकि पहली शिक्षा वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचार्य की मिलती थी स्टूडेंट लाइफ में। उस एक के कारण से सारा समाज जो है मंद मत, उनको मिसगाइडेड है, कोई किसी ने हमको बताया नहीं, उसने बोला किसी ने हमको ये शिक्षा दी ही नहीं। और हमारे इस वक्त जो हमारे संस्था की स्थिति है उसमें हमारे पास सब लोग जो 20-25 साल के बाद के आते हैं, तो ब्रह्मचार्य की शिक्षा का तो उन्होंने कभी अध्ययन किया ही नहीं है। अब आवश्यकता हमारी फ्यूचर की, ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण था कि हमारी गुरुकुल बच्चे हमारे जहां पढ़े हैं, ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का एक पूरा विंग था प्रीचिंग का, किसी तरीके से वो अभी सफलता के आसमान को छूने में नहीं आगे बढ़ पाया है। तो कल ही किसी ने कहा बच्चों को क्या करें, असल में हमारी जरूरत ये है, असल में दो टाइम की रोटी कमाना हमारी जरूरत तो है, लेकिन हमारी जरूरत है हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, ये मिसगाइडेड ना हो जाएं, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए कहीं स्कूल बनाने की आवश्यकता है अपनी, किसी भी लेवल पे हमारे को बच्चों को गाइड करने का हमारे पास साधन अभी तक हम जुटा नहीं पाए। एक तो वो प्रेसिडेंट है मॉरिशस का, वो ऑफिसर है टेलीकम्युनिकेशन, वो बोलता है हम हैं प्रेसिडेंट, हैं भक्त, करते हैं प्रचार है, लेकिन काम हिरणाकश का करते हैं। मैंने बोला कैसे, बोला अपने बच्चों को, वो बच्चा कहता है जब करूंगा, हम बोलते हैं नहीं स्टडी करो, ये तो प्रहलाद महाराज को जैसे हिरणाकश रोक रहा था, हम कर तो हम ऐसे ही रहे। उसने बेचारे ईमानदारी से बताया कि हम प्रचार दूसरों को करते हैं, लेकिन अपने बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं भाई स्टडी कर लो अपनी। कहने का तात्पर्य कि हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है, तो कम से कम हमने कहा संडे एजुकेशन जो है वो हमको चिल्ड्रन की जगह जगह पे शुरू कम से कम करनी चाहिए। और आप सब पेरेंट हैं, आपको मालूम है किसी घर में हम जाते हैं तो बच्चे को पकड़ के लाते हैं, मुर्गे की तरह बोलते हैं एक चलो बताओ, हमको कहते हैं एक श्लोक बताओ, उसको कहते हैं आके इसको श्लोक बताओ, करते हैं कि नहीं है? और जब बच्चा श्लोक बताता है तो खुश माँ बाप होते हैं, उनको खुद को नहीं आता है वो बड़े खुश होते हैं। तो कैसे भी कुछ विशेष रूप से जो है आप जो वैष्णवीज हैं उसमें से जिसका टैलेंट टीचिंग का हो तो बच्चों की संडे क्लासेस बहुत जरूरी है, उसका कैरिकुलम बने हुए हैं, बहुत जगहों पे कैरिकुलम चल रहे हैं। मैं दुबई वाले कुछ इंग्लैंड का कैरिकुलम यूज कर रहे हैं, बच्चों का चौपाटी का अपना कैरिकुलम चल रहा है। तो एक ये बच्चों का शिक्षा देना मंद मती मत मिसगाइडेड अगर प्रभुपाद लिखा इसका मतलब गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, और गाइडेंस बच्चों को ही देना। बच्चे भी 10-1 साल तक हमारी बात मानेंगे, 11-12 साल से जब वो कंप्यूटर से बात करना सीखेंगे तब हमारी बात नहीं मानेंगे। तो वो टाइम हमारे पास कम से कम उनको प्रॉपर गाइडेंस देने का आवश्यक है हमारे लिए, उतने दिन तो कम से कम हम उनको सही रास्ता बता दें। उसके बाद बाहर जाने के बाद जब उनको फिर कम से कम उनका जिस संस्कार पहले होंगे तो उसमें आगे ज्यादा विकृति नहीं आएगी। तो ये हमारी एक आवश्यकता है, इसको हम किस तरीके से संपन्न करते हैं। कहीं कहीं भक्तों को इसकी आवश्यकता पड़ी और मेरे ख्याल बहुत बहुत सबसे ज्यादा हमारी जरूरत ही है। मैं भक्त बने, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, उनको सकल विवाह करना है, ये वो करना है, फिर हम लड़का ढूंढें कि लड़की ढूंढें, वो कहां से लाएंगे जब शिक्षा होगी नहीं बच्चों की। तो ये हमारी आवश्यकता है, कैसे भी इसको करेंगे इसके लिए कुछ लोग डेडिकेट होना चाहिए। अभी हम इसके ऊपर ज्यादा काम कर नहीं पा रहे, कहीं कहीं हो रहा है। तो मंद मत्य, एक तो है उम्र कम, दूसरे है आलसी, तीसरा आलसी है लेकिन बुद्धि भी नहीं है, मार्गदर्शन भी नहीं है, मंद मत्य। भाई मंद मत्य बुद्धि नहीं है वो, लेकिन भाग अच्छा हो तो बोले भाग भी अच्छा नहीं, मंद भाग्य। कलयुग में लोगों का भाग भी अच्छा नहीं है। भाग्य किसको बोलते हैं असल में? प्रभुपाद की भाषा में हम बहुत भाग्यशाली, प्रभुपाद तुम्हारा भाग्य नहीं है, मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया। तो भाग्यशाली का असल में अर्थ होता है जिसको अच्छा संग मिल जाए। भाग्यशाली वो है, ये मैं चेतना महाप्रभु का उत्तर है कि इस दुनिया में सबसे बट द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड क्या है, तो बोला भक्तों का संग। तो भाग्य सुभाग्य, भाग किसका अच्छा है? जिसका जिसको अच्छा संग मिल जाए, भक्तों का संग मिला है वो भाग्यशाली। और दुर्भाग्य किसका है? जिसको गलत संग मिल गया। तो अनलकी, लकी नहीं आदमी। एक होता है पुण्य, एक होता है पाप। तो पुण्य कब होता है? पुण्य उदयी तब होता है जब भक्तों के संग में हरि कथा सुनते हैं, नहीं तो संसार में जो कुछ कर रहे हैं वो पाप की परिभाषा में ही आता है। अंतगतम पापम पुण्य कर्मणाम, जिसके पाप नाश किए हुए हैं कैसे पुण्य कर्म, मुझे पुण्य कर्म क्या है वहां लिखा है साधु संग। और तो मंद भाग्य लोगों का है, तो आप मतलब आपका मतलब कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों का काम क्या है? लोगों को संग देना, जिनका भाग्य अच्छा नहीं है उसका अच्छा भाग्य बनाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमको करना है। तो लोगों का भाग्य भी अच्छा नहीं है, भाग्य का ये नहीं है कि धन कितना है इसके पास, ये भाग्य नहीं है। फॉर्च्यून दे आर मिस फॉर्च्यून अनलक्की, तो ये भाग्य का अर्थ ये तो कर्मों का जो है वो सबको मिलेगा, जो भी थोड़ा है कम है ज्यादा है वो उसे मैं एडजस्ट करके काम चलाना पड़ेगा। लेकिन साधु संग नहीं मिले तो सब कुछ होते हुए भी दुर्भाग्य। और अंत में बोला भाग्य अच्छा हो तो, बोला भाग्य अच्छा नहीं है कोई बात नहीं है, बोला फिर भी सदा के लिए उपद्रव उपद्रुता हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। ये सारे कलयुग के अवगुण हैं। कलयुग के लोगों को एक ही बात क्यों बताएं, आसान बात क्यों बताओ सुतक गोस्वामी? बोला ये सब अवगुणों में घिरे हुए लोग हैं, इन लोगों के लिए अब सारे शास्त्रों को पढ़ना समझना उसमें से सार अपने आप निकालना संभव नहीं है। तो आप इसका तो पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में आचार्य के पूजा का निर्देश किया हुआ है। कहाँ किया है भगवत गीता में आचार्य की पूजा का निर्देश? 13वें अध्याय में आचार्य उपासनम। उसका पहला शब्द क्या है? अमानितम। और ये किसके लक्षण है? 18 ज्ञान के, ज्ञान के लक्षण है। ज्ञान क्या है? गे क्या है? ज्ञान में एक पहली शुरुआत क्या है ज्ञान की? अमानितम, मतलब निमरता। और ये आएगी कैसे? आचार्य उपासना। क्यों? आपसे बड़ा होगा तब आप छोटे बनोगे, नहीं तो छोटे कैसे बनोगे? आचार्य उपासनम का मतलब है अहंकार का दमन। उसके सामने हमको छोटा ही होना पड़ेगा ना, जब बड़ा कोई होगा तो आचार्य उपासन पर्वत। तो आचार्य कौन होता है फिर? तो आचार्य की हमारे को पूजा करनी चाहिए, अथवा वहां जाने से हमारे में निम्रता आएगी। तो आचार्य किसको कहना चाहिए, ये अगर पूछा जाए तो प्रभुपाद कहते हैं उसको कहना चाहिए जो सदा जन सामान्य के शुभ चिंतक और भले का सोचता हो, उसको आचार्य कहते हैं। प्रभुपाद जी अपनी चिट्ठी में सबके नीचे क्या लिखते थे? यूर एवर वेल विशर, आपका सदा शुभ चिंतक। ये आचार्य की परिभाषा है। तो यहां प्रभुपाद लिखा, ऑलवेज एब्जर्व इन थॉट ऑफ वेल बींग ऑफ जनरल पब्लिक, स्पेशली देयर स्पिरिचुअल वेल बींग। स्पिरिचुअल वेल बींग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटीरियल वेल बींग, ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटीरियल वेल बींग। तो ये आचार्य की परिभाषा है। तो कलयुग के लोगों का ऐसा भविष्य अंधेरा देखकर ये सारे आचार्य लोग जो गए बैठे हैं, शांत लोग, ये सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर सूत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय में दिया है, और मेरे ख्याल में 7वां श्लोक है कि 8वां है? हाँ, 6ठा श्लोक है, 6ठा है कि 7वां है, देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या, पहला प्रश्न समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? बहुत सालों से हम भी इसके ऊपर अध्ययन पूछ रहे, कभी ऐसे 1, 2, 3 करके याद नहीं है, तो ये याद करना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या हो गया? सरल रास्ता क्या है? अब उत्तर क्या है ये सुन लेते हैं। दूसरे अध्याय का पहला स्कंद, दूसरा अध्याय 6ठा श्लोक है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षय अहेतुकी अप्रतिहता यस्य आत्मा सुप्रसीदति। धर्म, वहां प्रश्न क्या है? अंजसा, अंजसा और क्या था, 3-4 शब्द? विनिश्चितम, अंजसा और एकांत, और काम क्या? श्रेय। तो सबका श्रेय क्या है? सबका कल्याण किस में? सबका कल्याण है, सबका कल्याण है परोधर्मो। परोधर्मो, अब तो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में माना लिखी है इसको, देखिए पर और धर्म। पर को लिखा है सबलाइन और धर्म को लिखा है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन। तो सबलाइन किसको बोलते हैं? हाँ जी,
डिवाइन, डिवाइन।
बहुत ये, बहुत ये केमिस्ट्री का वर्ड है सबलिमेशन। सबलिमेशन केमिस्ट्री का वर्ड है, जिसमें दो चीजें मिलाते हैं, तीसरी बनती है, कैसे बनती है पता नहीं लगता है। क्या हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसे हम भूत से भक्त कैसे बन जाए, इसको सबलिमेशन बोलते हैं। तो सबलाइन की है कि वैसे तो हमें भूत है, उसको उसमें से भक्त बनना, इसको सबलिमेशन बोलते हैं। दिखेगा, दिखेगा नहीं, वैसे तो हम भूत की तरह घूम रहे थे, जैसे प्रभुपाद के पास जो भक्त आए थे तो वो तो भूत ही दिख रहे थे, उनको भक्त जैसे बना, इसको सब्लिमेशन बोलते, सब्लाइम। कैसे हुआ किसी को मालूम नहीं है, लोग कैसे चेंज हो गया। आप लोग आपको कभी कहते हैं ना, आप में इतना परिवर्तन कैसे, आपको क्या हो गया, अब तो आप तो चाय भी नहीं पीते, आप ये नहीं खाते, ये सब्लिमेशन है। आपके अंदर जो परिवर्तन आया वो आपको भी मालूम नहीं है कैसे आया, आप खुद देखें, आपको मालूम नहीं है, ये अनसीन प्रोसेस। तो सॉलिड गैस में बदल गया, ये सब्लिमेशन है। केमिस्ट्री पढ़ती है, पढ़ाती है क्या कपूर ये, लेकिन ये सारे कपूर तो नहीं उड़ रहे हैं अभी एक ही कपूर उड़ा था जिसने मदन मोहन मंदिर बनाया, बाकी तो कपूर बेटियां बंद हो रही है। कपूर एक कम्युनिटी है ना, उस कपूर कम्युनिटी ने मदन मोहन पहला मंदिर वृंदावन का बनाया, वही एक सब्लिमेशन हुआ, बाकी तो कपूर सारे असिमिलेशन हो रहे हैं, कटे हो रहे हैं। तो पर का मतलब सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन यहां प्रभुपाद ने सब्लाइम लिखा है। सब्लाइम का मतलब है भक्ति जीवन में परिवर्तन लाती है, आदमी को भी पता नहीं लगता कि मैं ऐसे कैसे कर पाया। और धर्म का मतलब ऑक्यूपेशन, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऑक्यूपेशन मैंने इसलिए लिखा है कि जो जीव आत्मा है उसका धर्म है ही सेवा करना, तो ऑक्यूपेशन धर्म को यहां लिखा है। और क्या है वो, भक्ति। तो क्या करना चाहिए, एक काम क्या करना चाहिए सारी दुनिया को, भक्ति। क्या करेगी भक्ति, वो सब्लाइम धर्म है, वो आपके जो आपका धर्म है, धर्म मतलब जीव आत्मा का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, उसको प्रकट कर देगी। भक्ति एक ही सरल साधन है जो जीव आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को प्रकट कर देगी। और क्या है जीव आत्मा का स्वभाव, स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। वो अपने आप को जीव का ये जो स्वरूप है उसको अपने आप सिद्ध कर देगी। किसकी भक्ति, फिर प्रश्न उठता है, अधोक्षजय, जो इंद्रियों से परे है। अधोक्षजय का मतलब क्या होता है, ऑन टू द ट्रांसेंडेंस, मतलब इंद्रियों से परे। एक होता है जो देखा जाए, अधो, अधो मतलब दूर, अक्षजय आंख से, देखने से दूर है जो, तो ये सब्लिमेशन की यही परिभाषा है कि दिखेगा नहीं, भगवान भी दिखेगा नहीं, लेकिन उसके नाम, उसका नाम और उसको देखना बराबर है। प्रभुपाद जैसे अल्टीमेटली जिसे कहते, वो रास्ता क्या है भक्ति का, भगवान का नाम जपना, हरे कृष्ण, अल्टीमेटली डेफिनेशन ये आएगी। अधोक्षजय, किसकी भक्ति करनी चाहिए, अधोक्षजय। अब अधोक्षजय भगवान का नाम है, ऐसे भागवत ऐसे लिखा है कि पहले आदमी पढ़ेगा तो परेशान नहीं करेगा, भाई हाँ तो इसमें ये लिखने के, और इसको ऐसे क्यों बोला है तब कभी इसका भाव कहते हैं कि उस वक्त जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तो वहां जो बैठे थे उसमें तो कई ज्ञानी थे, कई योगी थे, कोई अलग अलग प्रांत के, ऐसे तिलक वाले, ऐसे सब बहुत थे, तो उनको आस्ते आस्ते उस स्टेज के ऊपर लाने के लिए तो यह शब्द ऐसा अधोक्ष लिखा है, इंद्रियों से जो परे है। और वैसे कौन सा पद्म पुराण का श्लोक प्राय प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई इंद्रियों से कभी भगवान को जाना नहीं जा सकता, अत श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रहणे ग्रहण में इंद्रिय, इंद्रियों से ये ग्रहण नहीं किया जा सकता, अधोक्षजय है। क्यों नहीं इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता, क्योंकि अधोक्षजय, ये इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है। तो भाई कोई रास्ता है इसको ग्रहण करने का, जीवाधो स्पुर्दे अद, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, कब, जब आप जीभा को उनकी सेवा में लगाएंगे। तो जीभा को कैसे सेवा में लगाएंगे, जीभा का तो दो ही काम है, खाना और बोलना, दो ही काम है जीभा के, तो बोलने में हरे कृष्णा बोलो, खाने में प्रसाद खाओ, तो भक्ति शुरू हो गई। और अधोक्षजय जो दिखने में नहीं आता है, जो इंद्रियों से परे है, वो प्रकट हो जाएगा। कब होगा? अपनी कृपा से, उसकी कृपा से प्रकट होगा, हमारे प्रयास से नहीं होगा, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो क्यों करें भक्ति अधोक्षा जी की? कोई हेतु है? अहेतु की, हेतु नहीं। ये अहेतु की क्यों लिख दिया इसने? क्योंकि प्रायः लोग भगवान की भी भक्ति करते हैं तो हेतु रखते हैं कि इसमें हमें ये फल मिलना चाहिए, इसमें हमें ये फल मिलना चाहिए। तो हेतु से भक्ति नहीं करनी चाहिए, हेतु से भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, वो उसमें सबलिमेशन नहीं होगा। तो यहां हेतु का अर्थ है, दो शब्द इस हेतु के अर्थ में प्रभुपाद ने दो शब्द लिखे हैं, एक तो फल इच्छा से नहीं करनी चाहिए, किसी संसार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति के फल की इच्छा से भक्ति नहीं करनी चाहिए, और दूसरा मेंटल स्पेक्यूलेशन, मतलब ज्ञान, एक कर्म और दूसरा ज्ञान, ये दोनों हेतु नहीं होना चाहिए इसके, क्यों? इसके बाद में लिखा जाएगा, ज्ञान अपने आप आ जाएगा, भक्ति का बेटा है ज्ञान, फल है भक्ति का, बेटा और फल एक ही बात होती है, ज्ञान और वैराग भक्ति के फल है। ज्ञान करने से भक्ति नहीं आएगी, लेकिन भक्ति करने से ज्ञान आएगा, वो बेटे हैं, उसके फल है, बेटे का मतलब फल है। और दूसरा अप्रतिहिता, अप्रतिहिता का मतलब क्या है? उसमें अखंडित, किसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में मिले हुए शब्द हैं, किसी हेतु से करोगे तो हेतु सिद्ध हो जाएगा, फिर आपकी भक्ति बंद हो जाएगी, हेतु से नहीं करोगे तो निरंतर रहेगी, हेतु का मतलब निरंतर, निरंतर भक्ति तब होगी जब कोई हेतु नहीं होगा, तो फिर कोई तो हेतु होना चाहिए, बगैर हेतु का कौन काम करेगा? तो हेतु कृष्ण प्रेम है। यहां भक्ति का शब्द जो और प्रभुपाद जी यही श्लोक हर समय उद्धृत करते थे, किसी भी दूसरे फेथ वाले से बात करते, दूसरे मजहब वाले से बात करते थे, बोला एक ही मजहब है दुनिया में, आप भगवान से प्रेममयी सेवा करना जो सिखाए, और सेवा में कोई न हेतु कोई नहीं हो और जो निरंतर हो। लेकिन फिर भी देखो एक चीज लास्ट में, इस दुनिया में ऐसे वेद का एक मंत्र है कि बगैर हेतु के कोई आदमी इस दुनिया में काम नहीं करता, मूर्ख भी बगैर लोभ के काम नहीं करता, कुछ ना कुछ वो लोभ होगा तब काम करेगा। तो आखिर क्या इसमें फायदा है? तब लास्ट लाइन है, जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसीदति कंप्लीटली सेटिस्फाइड, जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। तो भक्ति आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। तो हेतु क्या है? आत्म सुप्रसीदति हेतु है इसका। कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ, आत्मा की संतुष्टि जिसमें पूर्ण, आत्मा की परिपूर्ण संतुष्टि जिसमें हो। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब आप इन दोनों का भावार्थ कल पढ़ लीजिए, पहला प्रश्न पहले प्रश्न के उत्तर को कल पढ़ लीजिए दो जगहों पे, और फिर जो भी आप दो दो चार चार का पांच का एक ग्रुप बना लीजिए, इसके अंदर आप अपने विचार से कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे इसको पक्का कर लीजिए कल, ठीक है? तो दो चार मिनट कल पहले इसके, 10 मिनट पहले इसके ऊपर, एक पहला प्रश्न क्या है, आपने अपनी भाषा में कैसे समझा है? मैंने मेरी बुद्धि से मेरी भाषा में समझाया, आप जब इसको अपनी भाषा में अपनी बुद्धि से कैसे समझाएंगे? तो इसको थोड़ा कल पहले, आज प्रश्न पहला पूरा करते हैं यहाँ। हरे कृष्ण। अच्छा, अब दो मिनट जाने से पहले, 2 मिनट, आप आज के इस क्लास में 3 आदमी एक एक बात बताओ जो आप इसमें से अपने जीवन में उतारोगे। बोलिए सीताराम। क्या सीताराम? बहुत अच्छा, आलस छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कलयुग से बचने का ये पहला तरीका है आलस छोड़ना। बहुत अच्छा, सीताराम जी कहते हैं आलस छोड़ेंगे। एक अभी यहाँ वैष्णवी बोलो, किसी एक का मन में कोई विचार आया है कि आज की क्लास से कुछ हमारे जीवन में हम क्या करना चाहेंगे? ये तो अच्छा बात, बहुत अच्छी है, बोलो बेटा।
आपने कहा कि मैच्योरिटी के साथ अपने को हर गुरु से सीखना चाहिए।
ये तो भागवत से और चैतन्य चैतन्य हमें मिला। हर गुरु से मतलब यहाँ परिवार, हम सिर्फ इस्कान के अंदर की बात कर रहे हैं। कम से कम हमारा इतना इतना व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए कि ये सारे प्रभुपाद के जो है वो शिक्षाओं को दे रहे, एक ही चीज पढ़ा रहे, बता रहे हैं, तो इसमें हमें अंतर नहीं है। वो दूसरी बात है कि हमारा शिक्षा गुरु जो है वो परम, मतलब पहला हमारा इनिशिएटर है, तो वो तो पूजन अपनी जगह पे है, लेकिन और जगहों से शिक्षा ग्रहण करने में हमारी उदारता होनी चाहिए। ये संस्था को दीर्घ काल तक चलाने में सहयोग करेगा। ओ पीछे आप बोल रही थी बेटी, भाग्यशाली बनना है। बहुत अच्छा, भाग्यशाली कैसे बनोगी? भक्तों के संग से हम भाग्यशाली बनेंगे। अच्छा, अब मेरा प्रश्न आपसे है, कौन सा भक्तों का संग सबसे अच्छा है? वैसे कहते शुद्ध भक्त के संग से अच्छा बनेगा, अगर वो अंदर जाएंगे तो
भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहयोग
करे।
सही
भक्तों का सही
प्रभुपाद का संग करना है। पुस्तक प्योर भक्त है और आपके घर में अवेलेबल है, जब चाहो उठाओ। बाकी भक्त से संग आप कहाँ करोगे, किधर जाओगे? आपके लिए सबसे उत्तम संग ये है प्रभुपाद का पुस्तक के अंदर से, इससे ज्यादा अच्छा संग कोई नहीं। ये संग पुण्य पे करेगा और फिर जो इसको समझाने वाला है उसका जब समय मिलेगा, रोज तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो कभी भी मिल सकता है। ये तो आधी रात को आपको 3 बजे मन करे तो उठाओ और संग कर लो, ऐसा संग तो और कोई नहीं। ये बेस्ट संग है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे?
इसमें प्रवीण, जैसे आपने बताया कि शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे, कितनी मतलब सरलता से प्रश्न कर रहे और रिस्पेक्ट देते हुए उनको, स्वामी जी को रिस्पेक्टफुल, उनको रिस्पेक्ट देकर कह रहे कि आप हमें कुछ समझाइए, और उनके पीछे मोटिव उनका वो ये कि जन सामान्य का कल्याण हो। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलनी है कि हमें अगर अपने गुरुजन से वरिष्ठ प्रश्न करना है तो उसका मतलब यही है कि बाकी सबका कल्याण हो, हमारा पहले कल्याण हो और बाकी सबका भी इसमें लाभ ले सके।
बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की हरे कृष्णा। एक घंटा 12 मिनट हो गए भैया।